संबंध, जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई, इस पर आगे के चार श्लोक कहते हैं। अहम् क्रतुरः यज्ञ स्वधाम औषधौ मंत्रो हमैवाज्य महमग्निरः मुहूर्तौ पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमौकार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरेत प्रभव प्रलय स्थानौ निधानौ बीजमव्ययौ। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता धाता माता पितामह गति भरता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सुहृद उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान माने भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। व्याख्या। सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक के इस मध्यम षटक में भगवान ने अपनी भक्ति का वर्णन किया है और उसमें अस्मत् अहम् मम मया मत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ सोलहवें श्लोक में तो अस्मत् शब्द अर्थात अहम् शब्द का प्रयोग आठ बार किया है। अहम् शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस षटक में किसी दूसरे श्लोक में नहीं किया है। अपनी रुचि श्रद्धा विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उनके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में वो संबंध सत के साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व को ही जानता है, परमात्मा के सिवाय दूसरे किसी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया आदि की किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसमें उसको किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अतः सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसमें अपने को किंचन मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। कारण कि ये सब भगवान कैसे हो सकते हैं, यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ देखने सुनने समझने और मानने में आता है सब केवल भगवान ही है। इसी कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाह महम औषधम, जो वैदिक रीति से किया जाए वो क्रतु होता है, वह क्रतु मैं ही हूं। जो स्मार्त रीति से किया जाए वो यज्ञ होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं वह यज्ञ मैं हूं। पितरों के लिए जो अन्न तर्पण किया जाता है उसको स्वधा बोलते हैं, वह स्वधा मैं हूं। उन क्रतु यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो साकल्य है, अर्थात वनस्पतियां हैं, बूटियां हैं, तिल जो छुआरा आदि औषध है, वो औषध भी मैं हूं। मंत्रो है मेवाज्य महमग्निरहम हुतम, जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूं। यज्ञ आदि के लिए गोघृत आवश्यक होता है, वो घृत भी मैं हूं। जिस आहवनी अग्नि में होम किया जाता है वो अग्नि भी मैं ही हूं, और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूं। वेद्यम पवित्र मौकार ऋक्षाम यजुरेव च, वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद्य है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद्य कहलाती हैं, वह वेद्य मेरा स्वरूप है। यज्ञ दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, 18:5। इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती हैं, वे भी पवित्र हो जाती हैं, और इनमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वो भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा स्वरूप है। क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया है उन सब में सबसे पहले ओंकार का ही उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएं अभीष्ट फल देती है। वेदवादियों की यज्ञ दान तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। 17:24। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। उन क्रतु यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद हैं, जिसमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती हैं। उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद बोलते हैं, जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अनियताक्षर मंत्र होते हैं वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। ये तीनों ही वेद भगवान के ही स्वरूप हैं। जिन मंत्रों में अस्त्र शस्त्र भवन निर्माण आदि का लौकिक विद्याओं का वर्णन है वे सब मंत्र अथर्व वेद कहलाते हैं। लौकिक विद्याओं का वर्णन होने से क्रतु यज्ञ आदि के अनुष्ठान में उसका नाम नहीं लिया गया है। इसी कारण आगे 20वें श्लोक में और 21वें श्लोक में त्रैविद्या त्रै धर्म मनु प्रपन्ना पदों में भी ऋग यजु साम इन तीनों का ही संकेत किया गया है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूं। अहम कृष्णस्य जगत प्रभव है, और बार बार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हूं, इसलिए मैं पिता हूं। 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन ने भी कहा है कि आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य। इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूं, और संसार मात्र का जो विधान बनता है उस विधान को बनाने वाला भी मैं ही हूं, इसलिए मैं धाता हूं। जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली माता मैं हूं, अर्थात मैं संपूर्ण जगत की माता हूं। प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं, इस दृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं, पर वे ब्रह्मा जी भी तो मुझसे ही प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से मैं ब्रह्मा जी का पिता और प्रजा का पितामह हूं। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदिकर्ता कहा है, ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुरित। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह गति स्वरूप मैं ही हूं। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूं। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं हूं। मेरे ही अंश होने से सब जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मुझ में ही रहते हैं, इसलिए उन सब का निवास स्थान मैं ही हूं। जिसका आश्रय लिया जाता है वो शरण होता है, तो मैं शरणागत वत्सल हूं। बिना कारण प्राणियों का हित करने वाला सुहृद हितेश वो भी मैं ही हूं। प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। संपूर्ण संसार मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में ही लीन होता है, इसलिए मैं प्रभव हूं और प्रलय हूं। मैं ही संसार का निमित्त कारण हूं और उपादान कारण हूं। महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मुझ में ही समा जाता है, इसलिए मैं संसार का स्थान हूं। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति संसार जीव अथवा जो कुछ देखने सुनने समझने में आता है सब का सब मुझ में ही रहता है, इसलिए मैं निधान हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होते हैं, वृक्ष बीज को पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु ये दोनों ही दोष मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं अनादि हूं, पैदा होने वाला नहीं हूं, और अनंत सृष्टियां पैदा करके भी वैसा का वैसा ही रहता हूं, इसलिए मैं अव्यय बीज हूं। परिशिष्ट भाव, जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुण ही गुण में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसे ही भक्ति की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान में अर्पित हो रही है। जैसे कोई गंगा जल से गंगा का पूजन करे, दीपक से सूर्य का पूजन करे, पुष्पों से पृथ्वी का पूजन करे, ऐसे ही भगवान की वस्तु से भगवान का ही पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य भी भगवान और पूजने की सामग्री भी भगवान पूजा भी भगवान और पूजक भी भगवान। लौकिक बीज तो खेती से पैदा होने वाला होता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज पैदा होने वाला ही नहीं है। इसलिए भगवान सातवें अध्याय में अपने को सनातन बीज कहा है, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम 7:10। अब यहाँ भगवान अपने को अव्यय बीज बताते हैं, बीजम अव्ययम, कारण कि लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांड पैदा करके भी ज्यों का त्यों रहते हैं, इसमें किंचन मात्र भी विकार नहीं होता। तात्पर्य यह है कि भगवान संपूर्ण जगत के आदि में भी रहते हैं और अंत में भी रहते हैं। जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, ये सिद्धांत है। जैसे अनेक तरह की चीजें मिट्टी से पैदा होती है, मिट्टी में ही रहती है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाती है, ऐसे ही संसार मात्र के जितने भी बीज हैं वे सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही रहते हैं और अंत में भगवान में ही लीन हो जाते हैं। 10वें अध्याय का 39वां तात्पर्य है कि सांसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान रूपी अविनाशी बीज आदि मध्य और अंत में ज्यों का त्यों रहता है। अतः वर्तमान में संसार रूप से भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है।